तो ये श्रीमद् भागवत का आठवां स्कंध है। इसमें कई अध्यायों में भगवान वामन देव का चरित्र वर्णित हुआ है और भगवान वामन देव के अवतार के पहले की जो बातें हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था कि इंद्र को शाप दिया दुर्वासा मुनि ने। इंद्र को दुर्वासा मुनि ने एक माला दी अपने गले की, प्रसादी माला, और इंद्र ने वो माला अपने हाथी के गले में पहना दी। और हाथी क्या है, पशु है, वो थोड़ी समझता है, तो उसने उसको तोड़ करके अपने पैरों के नीचे कुचल डाली। तो दुर्वासा मुनि के सामने ही ये सब घटना हुई, तो उनको तो बड़ा खराब लगा कि मैंने इंद्र को बड़े प्यार से अपने गले की माला पहनाई और इसने हाथी को पहना दी और हाथी ने जो है उसको पैरों से कुचल डाला। और इंद्र ने कुछ भी नहीं किया कि दुर्वासा मुनि के सामने ही उनके गले की माला हाथी ने पैरों से कुचल डाली, तो इंद्र सोचते कि उसको उठा करके अपने सिर में लगाते, है कि नहीं। इंद्र अपने देवताओं के राजा के अभिमान में थे कि वो देवताओं के राजा हैं, अब हाथी के पैर के नीचे जो कुचली माला है उसको कैसे उठाएं। तो दुर्वासा मुनि ने साप दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। और जब असुरों को पता चला कि इंद्र को साप मिल गया है, तुरंत चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया। अब सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए और प्रार्थना करे, तो भगवान ने फिर कहा कि नहीं, असुरों का तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, तुम जो है समुद्र का मंथन करो, क्षीर सागर का, असुरों के साथ मिल करके अमृत प्राप्त होगा, तो अमृत जो है तुम लोग पी लेना, तब असुरों से तुम लोग लड़ाई करो और असुरों को फिर हराओ। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और अमृत जो निकला तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों से अमृत ले लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। और इसके बाद फिर असुरों को बड़ा गुस्सा आया कि उनके साथ तो बड़ा धोखा हुआ, तो लड़ाई हुई और लड़ाई में देवताओं लोग जीत गए और असुरों का काफी संहार हुआ। और बलि महाराज असुरों के राजा थे तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर लड़ाई समाप्त हो गई, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया, लेकिन शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे उन्होंने बलि को जिंदा कर दिया और जो भी असुर मारे गए थे उनको जिंदा कर दिया अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा। और फिर विश्वजीत यज्ञ कराया बलि महाराज का और हवन कुंड से ही सोने का रथ निकला और उस रथ के द्वारा बलि महाराज ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और इंद्र ने फिर पूछा बृहस्पति से कि ये बलि महाराज की इतनी बड़ी शक्ति कैसे बढ़ गई, तो बृहस्पति ने बताया कि उनके ऊपर उनके गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न हैं, अब तुम्हारा यही तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि स्वर्ग को छोड़ करके चले जाओ, जब समय अच्छा होगा तब तुम लोग कुछ करना, अभी समय तुम लोगों का अच्छा नहीं है। तो बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, असुर लोग स्वर्ग में निवास करने लगे और देवता लोग फिर स्वर्ग से बाहर कंदराओं में गुफाओं में छिपते फिरते हैं। अब अदिति माता जो है, जो देवताओं की माता है, वो बड़ी दुखी है। क्यों अदिति क्यों दुखी है, क्योंकि उनके पुत्र देवताओं के पुत्र हैं और उनको स्वर्ग से भगा दिया गया। तो कश्यप मुनि जब पूछते हैं अदिति से कि तुम्हारा क्या दुख है, तो अदिति सब बताती हैं। तो कश्यप मुनि जो है उनको पयोव्रत की पूजा की विधि बतलाते हैं, तो यहां से अब मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूं। कश्यप जी ने अपने पति अदिति से कहा, हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं और जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, सबको शुभ आशीष दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के गुरु हैं। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम। दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। अच्युत मतलब कभी निष्फल नहीं जाएगी। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां बिल्कुल व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। किसने कहा? कश्यप जी ने कहा। किसने कहा? आदित्य से कहा। सभ्यता श्रिते कामं हरिर्दीनानुकंपनः अमोघा भगवन भक्तिर नेतरेति मतिर मम। आदित्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे वह विधि विधान बतलाइए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। केनाहम विधिनाम ब्रह्मन् उपतास्ये जगत गुरुम यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् मनोरथम। कश्यप मुनि ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से ये व्रत की विधि पूछी थी, अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी, जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। ये तन्मे भगवान पृष्ठाम प्रजा कामस्य पद्मजहां यदा हिते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। फिर पयोव्रत की विधि बताई कश्यप मुनि ने कि क्या क्या करना है, और भगवान की प्रार्थना बताई कैसे भगवान की प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। अदिति को समझाया, हिरण गर्भ के रूप में स्थित जीवन के स्रोत प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, कि अदिति को इस प्रकार बोलना है। आपका शरीर समस्त योग ऐश्वर्य का स्रोत है, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योगे हेतवे। मैं आदि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित साक्षी और नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। हे पीताम्बरधारी भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को बस में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। नमो मरकत श्याम वपुषे धीगत स्त्रिये केशवाय नमस्तोभ्यम नमस्ते पीतवासते। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर हैं वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। तम सर्व वरदा पुंसाम वरेण्य वरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुम उपासते। सारे देवता और लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। निस्संदेह वे सभी उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। अंतर्वर्तन्तयम् देवां श्रीशतं पाद पद्मयोम् स्पृहयन्ते वामोदम् भगवान मे प्रसीदताम्। कश्यप ने कहा, इन मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा भक्ति के साथ स्वागत करो और उनकी पूजा की वस्तुएं अर्पित करो और केशव भगवान को संतुष्ट करो। किसने कहा? कश्यप मुनि ने कहा। एतैर मंत्र ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम अर्चे श्रद्धया युक्ता पाद्योस्पर्शनादि भी पाद्योपस्पर्शनादि भी। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। तम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मनाम शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। अब अदिति ने वैसा ही किया जैसा कहा कश्यप मुनि ने, वैसा ही किया। अदिति ने पूर्ण अचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और अपने मन इंद्रियों को पूरी तरह बस में कर लिया, भगवान वासुदेव पर अपने मन को केंद्रित किया और पयोव्रत नामक अनुष्ठान को पूरा किया। चिंतयन्ते कया बुद्ध्यां महापुरुषमीश्वरं प्रगृहेन्द्रिय दुष्टास्त्वान् मनसा बुद्धि सारथिं मनस्यैकाग्र्या बुद्ध्यां भगवत्यखिलात्मनीं वासुदेवे समाधाय चचारेह पयोव्रतम्। अब क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए। अभी जन्म नहीं है भगवान का, ये अभी तो भगवान प्रकट हो गए उनके व्रत से, मतलब जन्म लिया साक्षात प्रकट हो गए। तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए और चारों हाथों में संघ चक्र गदा और कमल लिए हुए प्रकट हुए। तस्या प्रादर्भूतात भगवान आदि पुरुषां पीतवासा चतुर्बाहु संघ चक्र गदाधर। जब अदिति की आंखों से भगवान दिखाई देने लगे तो दिव्य आनंद के कारण वे इतनी विभोर हो गईं कि तुरंत ही उठकर भगवान को नमस्कार करने के लिए भूमि पर गिरी। कैसे गिरी, दंड के समान। डंडा खड़े से एकदम ऐसे सीधा सीधा गिरता है, उसी प्रकार से गिरी। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम नाम भूविकायेन दंडवत प्रीति विवला। भगवान की स्तुति अब कर नहीं सकती, अभी तक तो भगवान की स्तुति करती नहीं, जब साक्षात भगवान आ गए तो उनकी बोली बंद हो गई। समझ रहे हैं आप लोग, जरा शांत रहिए। भगवान साक्षात जब प्रकट हो गए तो बोली बंद हो गई, समझे। जब अदिति का ये हाल है तो हमारा आपका क्या होगा, अगर साक्षात भगवान आ जाए तो क्या बोल पाओगे। अदिति नहीं बोल पा रही है भगवान के सामने, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। मतलब इसलिए नहीं कि भगवान भयानक हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे कुछ अपराध ना हो जाए। हम क्या बोले, हम अगर कुछ बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए हम घबरा जाएंगे। तो अदिति भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भराए, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः आह्लादित हो उठी और उनका शरीर कांपने लगा। सोत्थाय बंधांजलि रीदुतम स्थितां नोत्तेह आनंद जला कुलेक्षणां अभूवतोष्णीं बुलकाकुलाकृतिं तद्दर्शनात्सुलं तद्दर्शनात्युत्सव गात्र वेपथु। तब देवी अदिति ने थर थराती हुई वाणी से तथा प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा लगता था कि लक्ष्मीपति समस्त यज्ञों के भोक्ता समग्र विश्व के प्रभु और स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पी रही हो। अदिति ऐसे देख रहे हैं भगवान को जैसे आंखों से भगवान को पी जाएंगी। प्रीत्या स्नेहगंग दिया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्य तिथि कुरुद्वहम उद्वीक्षति स्थाप्यवती एव चक्षुषाम रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता, हे स्वामी, हे अच्युत, हे परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दिन दुखियों के आश्रय हैं, उनका कष्ट दूर करने के लिए प्रकट हुए हो, आप हम पर कृपालु हो और हमारे कल्याण का विस्तार करो। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ स्रवा श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक वृजनोप समोदयाद्य समना कृधेश भगवन सी दीन नाथ। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्वरूप इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा हैं, पालक हैं, संहारक हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हो तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में रहते हो। कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति में हमेशा आप समर्थ हैं, आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहित पुरुषक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय सत्सुदुप बृंगत पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस प्रकार पूजा की तो भगवान इस प्रकार कहा। अब भगवान बोले, भगवान क्या बोले? अदित्येवम् स्थितो राजन् भगवान पुष्करे क्षण क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति होवाच भारत। अब भगवान ने कहा, किससे कहा? अदिति से कहा। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी अभिलाषा को पहले ही से समझ गया हूं। तुम उन पुत्रों के कल्याण के विषय में चिंता कर रही हो जिन्होंने जिनको शत्रु ने स्वर्ग से खदेड़ दिया है, भगा दिया है। देव मातर भवित्यामि विज्ञातम चरकांक्षितम यत् सपत्ने हृत स्त्रीणाम चाबितानाम सुधामतः। हे देवी, मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को पराजित करके, अपना धाम प्राप्त करके और अपने पुत्रों के साथ मिलकर के मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी जो इच्छा है मैं जानता हूं। तान में निर्जित समरे दुर्मदान असुर सभान प्रतिलब्ध जय श्री भीम पुत्र छुपासी। तुम अपने पुत्रों के शत्रु असुरों की पत्नियों को देखना चाहती हो विलाप करते हुए। तुम्हारे असुर मारे जाएं, उनकी पत्नियां विलाप करें, तुम ये चाहती हो। इंद्र ज्येष्ठ सुतनयैर हतानाम युधि विद्युषाम स्त्री और दंती रासादेन्द्रस्तुमिच्छसी दुखिताम। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश और ऐश्वर्य प्राप्त करें और पहले से पहले के समान फिर से स्वर्गलोक प्राप्त करें। आत्मजांसु समृद्धां त्वं प्रत्याहृते यशा श्रियां नागपृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। हे देव की माता, हे देवों की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, क्योंकि ब्राह्मण उन पर प्रसन्न हैं, इसलिए भगवान की उन पर कृपा रहती है, अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग से सुख नहीं मिलेगा। प्रायोधुना ते स्वर यूथ नाथाम अपारणीय देवी मे मति यत्यनुकूले स्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाती। तो ये भगवान की कमजोरी है, कोई ब्राह्मणों की पूजा करे, भक्ति करे तो भगवान फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो असुर जो है ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा उन पर हो रही है, अब क्या करें। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूं, अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। अथापि पायो मम देवी चिन्त्यां संतोषितस्य व्रतचर्य याते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वान्। तुम अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति कर रही हो और पयोव्रत से मेरी समुचित पूजा कर रही हो, मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो यहाँ अपेत्य गुप्त अपत्य गुप्त पयोव्रते नानुगुणम समीरिता स्वांसे न पुत्र तुम पेत्यते सुतान गुप्ता मारी च तपस्याधिष्ठिता। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हैं तुम्हारे पति। अवधावपतिम भद्रेम प्रजापतिम कल्मसम माम च भावयति पत्यावेवम रूपम अवस्थितम। हे नारी, यदि कोई पूछे भी तो तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करना है। नारी इसलिए कहते हैं कि नारी का स्वभाव है, कोई बात हो बता देती है, तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे नारी, तुम ये बात नहीं प्रकट करना कोई पूछे तो, जो मैंने तुमसे बताई है। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। न तत्परस्मा आख्ययम् पृष्ठयापि कथंचन सर्वं संपत्ते देवीं सर्वगु देव गुह्यं तु संवृतम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। तो अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी तो प्रकट हुए और अदृश्य हो गए। भगवान से परम मूल्यवान वरदान पाकर कि उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को परम सफल माना, अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। ये तावत उक्त्वा भगवान तत्रैवां तरधीयत अदितिर् दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्मात्मनि प्रभु उपाधावं पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवं। ध्यान में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि ये देख सके कि उनके भीतर भगवान प्रविष्ट हो गए हैं। कश्यप मुनि की अचूक दृष्टि थी, वो समझ गए कि भगवान आ गए मेरे शरीर में। सब समाधि योगेन कश्यपस्तदबोध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेर अंशम व्यतीते क्षण। जिस प्रकार वायु लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच में प्रकट हो जाती है, अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर को अदिति की कुक्षी में स्थानांतरित कर दिया। शोदित्याम वीर्यमादत्त तपसाचर संवृतम समाहृदय मना राजन दारुण्यम यथा निलहम। अब ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी की दृष्टि भी तो बड़ी सूक्ष्म है। ब्रह्मा जी को पता चला क्या कि भगवान अदिति के गर्भ में है, तो दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे देवकी के गर्भ में जब भगवान थे तो सब देवता आए थे और स्तुति करने के लिए, अभी अदिति के गर्भ में भगवान है तो ब्रह्मा जी तुरंत आए भगवान की स्तुति करने के लिए। अदितेर्धसितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्य गर्भो विज्ञायम समीरे कुह नाम अभी। अब ब्रह्मा जी कैसे स्तुति करते हैं भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं, आपके कार्य असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। जयोरुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय के भीतर स्थित हो, तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोगों से परे हो। पहले आप कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, पहला अवतार हुआ कृष्ण गर्भ के रूप में कृष्ण सत्वा, और दूसरा अवतार हुआ वामन देव का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरा अवतार आप ले रहे हो, माता पिता वही हैं। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे तृणाभाय त्रिपृष्ठाय सितिविष्टाय विष्णवे। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि मध्य और अंत हैं, और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों और पत्तियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींच लेते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। तो मादिरंतो भवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहु कालो भवानाक्षी पति से विश्वम स्रोतो यथांतापतितम गभीरम। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के आदि पिता हैं और आप प्रजापतियों के भी पिता हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते व्यक्ति के लिए नाव ही सहारा होती है, उसी प्रकार आप भी अभी देवताओं के लिए एकमात्र सहारा हैं। तम मैं प्रजानाम सृजंगमानाम प्रजापति नामसि सम्भ विष्णु देवोकसाम देव देवस्युतानाम परायणम नौरेव मज्जतोऽप्सु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान का गुणगान किया तो भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। और कैसे हैं भगवान, चार हाथ उनमें संघ चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? खिले हुए कमल की पंखड़ियों जैसी हैं। एथम विरिंच स्तुत कर्म वीर्याम प्रादुर्बभुवामृत भूरदित्याम चतुर्भुजा शंख गदाब्ज चक्राम प्रसंग वासन लिनायते क्षणम। भगवान का शरीर सांवले रंग का है और कमल मुख कमल मकराकृति जैसे कुंडलों से शोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा है। वक्षस्थल पर क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है। कलाइयों में क्या है? कंगन। और सिर पर क्या है? मुकुट। और कमर में क्या है? करधनी। छाती की आर पर जनेऊ पड़ा है और कमर चरण कमलों पर पायल सुशोभित हो रही है। श्यामावदा तो झस राज कुंडल श्री बदनाम्बापमान श्रीवत्स वक्षा बल अंग दोलसन किरेट कांचे गुण चारु नूपुरहा। वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की माला है और फूल सुगंधित होने से मधुमक्खियों का समूह गुंजार कर रहा है उनकी माला में। जब भगवान गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। मधुव्रत ब्रात विगुष्टया सुयाम विराजिता श्री वन मालया हरि प्रजापतिर विस्म तमा सुरोचिताम विनाशियन कंठन विष्ट कौस्तुभाम। उस समय सभी दिशाओं में देखो जब भगवान का जन्म हुआ तो क्या हुआ? सभी दिशाओं में नदी सागर जैसे जलाशयों में और सबके हृदयों में प्रसन्नता छा गई। सभी ऋतुएं अपने अपने गुण दिखाने लगी। देवता गौएं और ब्राह्मण हर्ष से पूरित हो गए, हर्षित हो गए। जसा प्रसेदु सलीलाशया सदा प्रजा प्रहिष्ठा हृदवो गुणान्विता जोरंतरिक्षम शिथिरग्नि जिह्वाम गावो दुजा संजर सुरन नगाश्च। वो दिन कौन सा था? आज का दिन था। भगवान वामन जब प्रकट हुए तो आज का दिन था। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त 11:22 से शुरू होता है ना, 48 मिनट का होता है। तो भगवान 12 बजे के आसपास दिन में जन्मे थे, इसलिए दोपहर तक उपवास होता है वामन भगवान का। भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकृत्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त ग्रह अत्यंत शुभ हो गए। सूर्य से लेकर शनि जितने ग्रह हैं, यानी सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, सातों के सातों ग्रह कैसे हो गए? शुभ हो गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भीजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रो तज्जन्म दक्षिणम। द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। मध्य आकाश मतलब दिन के 12 बजे। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है ये विजया द्वादशी कहलाती है। श्रवण द्वादशी, विजया द्वादशी और वामन द्वादशी, ये तीनों नाम है। द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ताम यश्याम जन्म विदुर हरे। अब उस समय क्या हुआ? देवताओं के शंख ढोल मृदंग पड़ाओ और आनक बजे, इन सब विविध यंत्रों की ध्वनि से अत्यंत कोलाहल हुआ, काफी शोर हुआ। संग दुन्द भयो ने दुर्म मृदंग पणवान काम चित्रवादित्रय तूर्याणाम निर्घोष तुमलो भवन। अप्सराएं हर्षित होकर प्रसन्नता के मारे नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और मुनि देवता मनु और पितरगण और अग्निदेव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? स्तुति की। प्रीताश्चाप्सरसो नित्यं गंधर्व प्रवराजगुः तुष्टवुर्मुनयो देवा मनवः पितरोग्नयः। और क्या हुआ? सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस और सर्प और देवताओं के अनुयायी सबों ने भगवान का यशोगान करते हुए प्रशंसा की, नृत्य की, और अदिति की घर पर इतने फूलों की वर्षा हुई कि पूरा घर ढक गया। इतने फूल बरसाए, पूरे घर को ढक दिया उन्होंने, देवताओं ने। सिद्ध विद्याधरे गणाम सकिम पुरुष किन्न राम चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुज गोत्तमं गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाम अदित्या आश्रम पदम कुसुमे समय वाकिरन। जब अदिति ने देखा कि भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और अपनी शक्ति से दिव्य शरीर धारण किया हुआ है भगवान ने, तो आश्चर्यचकित होकर के प्रसन्न हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख और आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय की ध्वनि करने लगे। किसने कहा जय जय? कश्यप जी ने कहा। तो भगवान के कौन है? पिताजी। पिताजी बोले जय जय। दृष्ट्वादिति स्तम्भ जय गर्भ संभवम परम पुमांसम उदमापे विस्मिताम गृहित देहम निज योग माया प्रजापतिश्चाहे जयेति विस्मिताम। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने हैं तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला शरीर भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता है। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर नट शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है, इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनंत। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्ति सुकलां नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोन् भुवनेषु किन्तु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, वे वही व्यक्ति रहते हैं। उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ ये नहीं, उसी प्रकार से भगवान ने अपना तुरंत ही रूप बदल लिया। तो चार भुजाओं के भगवान थे और अब कैसे हो गए? वामन भगवान हो गए। यत्तन प्रभाति विभूषण आयुधैर अव्यक्त चिन्ह व्यक्त मधारयन् हरिः अभोवते नैव समामनो वटुम संपशतोर दिव्य गतिरेथानतः। अब ऋषियों ने जब देखा भगवान को किस रूप में, ब्रह्मचारी वामन के रूप में, तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि अब उनका जो समाज है वो प्रशंसित हो गया, क्योंकि ऋषि मुनियों के समाज में अब भगवान शामिल हो गए ब्रह्मचारी वामन के रूप में। तो ऋषि मुनि तो बहुत खुश हो गए कि भाई अब तो हमारा समाज बहुत ही गौरवान्वित हो गया है। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान संपन्न किए, जन्म संस्कार सब पूरा किया ऋषि मुनियों ने। तम्बटुम वामनम दृष्ट्वाम मोदमान महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। अब जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सूर्य देव ने गायत्री मंत्र प्रदान किया भगवान को। सब देवता अपने अपने भेंट दे रहे हैं भगवान को, तो सूर्य देव ने क्या दिया? गायत्री मंत्र दिया। और बृहस्पति ने क्या दिया? जनेऊ, जो देवताओं के गुरु हैं उन जनेऊ दिया। और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला दी, कमर के चारों तरफ जो मेखला होती है, मूंज की मेखला कश्यप मुनि ने दी। कश्यप मुनि मतलब पिताजी ने, तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताम ब्रवीन बृहस्पतिर् ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददान। हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान को क्या दिया? कमंडलु। ब्रह्मा जी ने भगवान को दिया कमंडलु, वामन देव को। और सप्तर्षियों ने कुशा प्रदान की, हाथ में कुशा धारण करते ना, कुशा दी। और षष्ठी ने उनको रुद्राक्ष की माला भेंट की। कमंडलुम वेद गर्भाम कुशाम सप्तर्षियो दधुम अक्षमालाम महाराज सरस्वत्यम व्ययात्मनहाम। इस प्रकार वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो कुबेर ने इनको भिक्षा पात्र दिए। भिक्षा मांगेंगे ना, तो एक भिक्षा पात्र दिया कुबेर जी ने। कुबेर जो धन के देवता हैं, तो भिक्षा पात्र दिया कुबेर ने। और भिक्षा, सबसे पहली भिक्षा किसने दी? शिव की पत्नी पार्वती ने सबसे पहले भिक्षा प्रदान की उनको। तस्मायुपनीताय यक्षराट पात्र कामदान भिक्षाम भगवती साक्षात उमादादंबिका सती। इस प्रकार सबने स्वागत किया और ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। इस प्रकार महान संत ब्राह्मणों की इस पूरी सभा में अद्वितीय दिखाई देते हैं भगवान। सब्रह्म वर्चसेन एवं सभाम संभावितो वटुः ब्रह्मर्षि गण संयुष्टाम अत्यरोचते मारीशः। इसके बाद वामन देव ने यज्ञ की अग्नि जलाई, पूजा की और यज्ञ संपन्न किया। समिद्यमाहितं बहिनीं कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य समं व्यर्चयन् समिन्धि रजुहो द्विजः। अब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। अब जैसे जैसे कर्म रखते हैं तो उनके भार से पृथ्वी नीचे धंस रही है, वामन भगवान कदम रख रहे हैं। लेकिन ये भार कैसा है? प्रेम का भार है। असुर जब पैर रखते हैं तो पृथ्वी में भार, पृथ्वी को भार महसूस होता है, वो पाप का भार है। जब भगवान पैर रखते हैं तो पृथ्वी को भार महसूस होता है, वो कौन सा भार है? प्रेम का भार है। तो पृथ्वी हिल रही है, भगवान जब चरण रखते हैं पृथ्वी पर। श्रुत्वा स्वमेधैर्य जमानम ऊर्जितम बलिम भृगुणाम उपकल्पित स्ततः जगाम तत्राखिल सार समृतो भारिण गाम सन्नमयन पदे पदे। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी पुरोहितों ने वामन देव को देखा, मानो सूर्य का उदय हो रहा है। वामन देव का तेज दिखाई पड़ रहा है, अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं अरे सूर्य यहां कैसे उदय हो गया। तम नर्मदया सत उत्तरे बलेर ऋतुजस्ते भृगु कच्छ संगते प्रवर्तयन्तो भृगवाकृतोत्तमं विचक्षताराद्वितं यथारविम। हे राजन, वामन देव के तेज से बलि महाराज और सभा के सारे सदस्य तेजहीन हो गए। जैसे सूर्य के सामने जो है आपके बल्ब है ना, ये सब फीके पड़ जाएंगे, तो उसी प्रकार से जितने भी बलि महाराज उनके जितने ब्राह्मण हैं वो सब फीके पड़ गए वामन देव के सामने। और एक दूसरे पूछते हैं कि सूर्यदेव आ गए क्या यहाँ यज्ञ में? यज्ञ को देखने के लिए सूर्यदेवता आ गए हैं क्या, या फिर सनत कुमार आ गए हैं, या अग्नि देवता आ गए हैं, कौन है? सरतरित जो यजमान सदस्याम हतत सो वामन तेज सान पेन सूर्या किराया त्युत वाविभावसु सनत कुमारो थया कृतो। अब भृगुवंशी पुरोहित अपने शिष्यों के साथ तर्क में लगे थे, उस समय भगवान वामन देव हाथ में दंड लिए और छाता लिए और जल से भरा कमंडल लिए उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। अब जब पास आए तो दिखाई पड़े कि कौन है, हा? ये ब्रह्मचारी वामन देव हैं। इत्थम सदस्य सुभृगु सुने कथाम वितर्क्यमाणो भगवान स वामनम छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश बिम्रन मेधवाटम। और भगवान मूंज की मेखला धारण किए हैं, जनेऊ धारण करे हैं, मृत चर्म का उत्तरी वस्त्र और जटाजूट धारण किए हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सब पुरोहितों का तेज घट गया और वे सब अपने आसन से खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। अभी जानते नहीं कौन है, लेकिन सब खड़े हो गए उनको देख करके, तेज देख करके। मौन जा में खड़े आवेतम अपवीता जिनोत्तरम जटिलम आमनम विप्रम माया माणवकम हरिम प्रविष्टम यक्ष भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिम प्रत्यग्रहणम समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसाम। भगवान वामन देव को देखकर परम प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। बलि महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए वामन देव को देख करके, जानते नहीं कौन है लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता से खोल ले रहे थे, एक से एक बढ़कर के उनके अंग हैं शरीर के। यजमान प्रमदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानुरूपा वैभवम तस्मा आसन महरन। इस प्रकार मुक्त पुरुषों को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। बलि ने उनके चरणों को धोया। स्वागत है ना अभिनंद्याथ है पादो भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चरण धारण करने वाले शिव जी, विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं, तो बलि महाराज को यह पता था, इसलिए शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों का धोवन से जो जल प्राप्त हुआ उसको अपने सिर पर छिड़का बलि महाराज ने। बलि महाराज जानते हैं कि शंकर जी इतने भक्त हैं, उनके गंगा जल को धारण करते हैं, तो उन्होंने भगवान के चरणों को धोया अपने सिर में, तुरंत ही छिड़का वो जल। तत्पाद शौचम जन कलमसापहम सधर्म विन्मोर निदधात सुमंगलम यं देव देवो गिरस चंद्रमौलिर दधारम दधार मूर्धना परे च भक्त्यम। अब बलि ने क्या कहा सुनो। बलि महाराज भगवान वामन देव से क्या कहते हैं। बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपया बताएं हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। ऐसा लगता है कि जितने ब्रह्मर्षियों ने तपस्या किए, तपस्या सब मिलकर के आप के रूप में प्रकट हो गई है, सब ब्राह्मणों की तपस्या मिलकर के ही समझो कि साकार हो गई है, ऐसा लगता है आप आ गए हो। स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपा साक्षान मन्ने त्वरेव पुरुधरम। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए, हमारा परिवार और समस्त वंश पवित्र हो गया, और जिस यज्ञ को हम कर रहे थे आपकी उपस्थिति से बिना किए ही पूरा हो गया। अब तो यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, आप आ गए तो हमारा यज्ञ पूरा हो गया। अद्य नहा पितरस तृप्ता अद्य नहा पावितम कुलम अद्य शिष्टः कृतुरयम् यद् भवानागतो गृहान्। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई है, आपके चरण कमल के जल से मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके छोटे छोटे जो चरण हैं इनके स्पर्श से पूरा जगत पवित्र हो गया है। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मज त्वचरणा बने जन हतांग तो बार भी रियम च भू रहो तथा अपने तातनो भी पदे स्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा लगता है कि आप यहां मुझसे कुछ मांगने आए हो, आप जो चाहो मुझसे ले लो, आपको गाय दे दूं या सोना दूं या बढ़िया सुंदर घर दे दूं या स्वादिष्ट भोजन दूं, पीने के लिए कुछ दूं या पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या दे दूं या गांव दूं, घोड़ा दूं, हाथी दूं, रथ दूं, आप जो चाहो लो मुझसे, क्या दूं आपको। यज्ञवटो वांछसे तत्प्रतीक्षमें त्वामर्थिनम विप्रसुतानु तर्कये गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा न पेयम तैवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धा सुरगान गजान वाम तथान तथा हत्तमे संप्रतीक्ष। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए और बलि की प्रशंसा करने लगे। भगवान अभी मांगा कुछ नहीं, प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, अगर कुछ लेना है किसी से तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो। इति वैरोचने रवाक्यम धर्मयुक्तम दशोन्नतम निसम्य भगवान प्रीतम प्रतिनंदेदम अब्रवीम। और भगवान ने कहा हे राजा तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें ये सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगु वंश के ब्राह्मण हैं, और तुम्हारे जो पितामह प्रह्लाद महाराज हैं वो शांत थे और धार्मिक शिष्टाचार का पालन करते थे, तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं प्रह्लाद जी। ये नहीं कहा कि वो मेरे भक्त हैं प्रह्लाद जी, नहीं, तुम्हारे वंश का यश बढ़ाते हैं। वजस्तव तजने सोन्नतम, वजस्तव तजने देव सोन्नतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भगवः सांपराये पितामह कुल वृद्धा प्रशांता। और तुम्हारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कंजूस हो, कोई भी नहीं हुआ पर कंजूस, हाँ, किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया हो ऐसा कोई हुआ ही नहीं, और दान देने का वचन देकर फिर पूरा ना करे ऐसा कोई हुआ नहीं। बिल्कुल पॉइंट बनाया, सही सही। हे तस्मिन कुले कश्चिन निसत्वाकृपणा पुमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्यम यो वादाता दुजाते। हे बलि तुम्हारे कुल में कभी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ में ब्राह्मणों को मांगने पर दान ना दिया हो या युद्ध में लड़ने से मना किया हो। यानी तुम्हारे कुल में सभी युद्धवीर और दानवीर हुए हैं, युद्ध में भी कभी मना नहीं करते, दान में कभी मना नहीं करते। तुम्हारा वंश तो प्रह्लाद के कारण बहुत यशस्वी है क्योंकि वे तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। असंधि तीर्थ यदि चार्थिनार्थिताम परांग मुखा ये तुम मन सुनेन विस्मत कुले यन्यसामलेन प्रह्लाद उद्भाति यदो यथोदुपहा खे। तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष ने भी जन्म लिया, वो भी बहुत महान थे, प्रशंसा कर रहे हैं, हालांकि वो महान असुर था, बदमाश था, लेकिन अभी तो लेना है ना तो प्रशंसा करना चाहिए, तो हिरण्याक्ष की तारीफ कर रहे हैं कि वो महान थे। हिरण्याक्ष महान थे, अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में घूमने लगे और कोई वीर नहीं मिला जो बराबरी कर सके उनकी, तो बड़ी परेशानी हो गई, कोई मिलता ही नहीं था उनसे लड़ने के लिए। यतो जातो हिरण्याक्षं शरण्येके मां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दते गदायुधः। अब समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने बराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया क्योंकि वो उनके सामने प्रकट हो गए थे। घमासान युद्ध हुआ, भगवान ने बड़ी कठिनाई से मार पाए हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। बहुत कठिनाई हुई भगवान को हिरण्याक्ष को मारने में, और जब भगवान हिरण्याक्ष के पराक्रम के विषय में विचार करते थे तो सोचते थे कि उसने मुझको जीता है, भगवान बड़ा है यही सोचते थे कि हिरण्याक्ष मुझे जीता है, क्योंकि पराक्रम हिरण्याक्ष बहुत ज्यादा था और बड़ी कठिनाई से मार पाए भगवान। देखा प्रशंसा करने की ये विधि है। यम निर्जित्य कृत्रेण विष्णु स्मोधार आगतम आत्मानम जैनम मेने तन्वीर भूर्यन स्मरण। अब हिरण्यकश्यपु ने जब सुना, वो तो बहुत बलवान थे हिरण्यकश्यपु, जब सुना कि उनके भाई का वध विष्णु ने किया है तो विष्णु को मारने के लिए विष्णु के धाम में चले गए। वो हिरण्यकश्यपु तो बहुत वीर थे, वो विष्णु को मारने के लिए विष्णु के धाम में चले गए। कैसे तारीफ करना चाहिए ये देखो। निसम्य तन्वधम भ्राता हिरण्यकश्यपुः पुराम हन्तुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगामे निलयम हरे। अब हिरण्यकश्यपु काल की भांति हाथ में त्रिशूल लिए आगे जब बढ़ रहे थे तो मायावी जो भगवान विष्णु है इस प्रकार सोचने लगे, डर के मारे विष्णु सोचने लगे। कैसी कहानी बना रहे हैं कि विष्णु डर के मारे सोचने लगे, हिरण्यकश्यपु से डर रहते हैं। तमायांतम समालोक्य स्थूलपाणिं कृतांतवन् चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वराहम्। विष्णु सोचते हैं कि मैं जहां कहीं जाऊंगा हिरण्यकश्यपु मेरा पीछा करेगा, जैसे मौत मौत की तरह मेरा पीछा कर रहा है। अतएव मेरे लिए यही इच्छा है कि उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं। विष्णु ने सोचा इसके हृदय में मैं प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि अपने बहिर्मुखी दृष्टि के कारण ये मुझे हृदय में नहीं देखेगा कभी, वो तो बाहर की दृष्टि देखता है। यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राण अमृता में वयम अतो हमस्य हृदय प्रवेक्षामि पराग्रसहम। तो हे राजन, भगवान इस निर्णय के बाद अपने पीछे पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकश्यपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसके श्वास के साथ नथुनों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो गए, छिप गए। एवं सनिश्चित रेपो शरीरम आधावतो निर्विशिषे सुरेन्द्र श्वास नीलांतर हित सूक्ष्म देहम तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेताम। भगवान विष्णु का स्थान अब खाली देखा हिरण्यकश्यपु ने। अब विष्णु अपने स्थान में नहीं थे, क्योंकि विष्णु कहाँ चले गए? हिरण्यकश्यपु के हृदय में। तो जब देखा कि नहीं है तो सर्वत्र खोजा विष्णु को, जब नहीं पाया तो जोर से गर्जना की और सारे ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्गलोक सब समुद्र में खोजा, किंतु उस वीर ने विष्णु को नहीं कहीं पाया। सतम निकेतम परिमृश शून्यम अपश्यमानः कुपितो ननादयम् सीमां द्याम विशाखम विवरान समुद्रान विष्णु निदर्श वीरः। उन्हें ना देखकर हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई की हत्यारे विष्णु को कहीं नहीं पा सका। अतएव अवश्य ही ऐसी जगह चला गया है जहां से कोई लौट नहीं पाता, विष्णु वहां चला गया है। अपसन्नति होवाचिन बयान विष्टम इदम जगन भ्रातृहा मे गतो नीनम नूनम यतो नावर्तते पुमान। तो अब इसके बाद हिरण्यकश्यपु की प्रशंसा करने के बाद विरोचन की प्रशंसा करते हैं। विरोचन, तुम्हारे पिता विरोचन, प्रहलाद की तो पहले ही प्रशंसा कर दी और फिर हिरण्यकश्यपु की अब विरोचन की प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पिता विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के बहुत भक्त थे और वे जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता उनके सामने आए हैं, किंतु मांगे जाने पर उन्होंने अपनी आयु भी उनको दे दी। पता था कि देवता आए हैं, ब्राह्मण नहीं है ये और शत्रु हैं हमारे, ब्राह्मण के वेश में आए इसलिए अपनी आयु भी दे दी। तो तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए, तुमको अगर पता चल जाए कि मैं भगवान विष्णु हूँ, तुमको दे देना चाहिए जो भी मैं मांगू। तो इस तरह से उन्होंने इशारा किया कि देवता लोग आए थे तुम्हारे पिता के पास, हालांकि ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण के वेश में आए, तो तुमने उन्होंने अपनी आयु दे दी। पिता प्रहराज पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सलहम स्वमायुर्द्विजलिंगे भ्यो देवे भ्यो दासयाचिता। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों और पुरखों और महान कार्यों के लिए सूरवीरों के सिद्धांत का पालन किया है, तुम भी बहुत वीर हो, दानवीर हो। भवान आचरितान धर्मान आज तो अग्रह में दिवीम ब्राह्मण है पूर्वज सूरैर अन्यश्चो दाम कीर्ति भीम। दैत्यराज ऐसे कुलीन और मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से माप कर केवल तीन पग भूमि की याचना करता हूं। अब मांगा, तीन पग भूमि मांग रहा हूं। तस्मात् तत्त्व महिमी सन मृणयम वरदर सभान पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानी पदा ममैन। हे समग्र ब्रह्मांड के राजा, यद्यपि आप बहुत उदार हैं और मैं जितनी भूमि चाहूं आप मुझे दे सकते हो, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता, जितनी आवश्यकता उतना ही मैं ले रहा हूं, थोड़ा ही ले रहा हूं आपसे। यदि विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता के अनुसार दान लेता है तो पाप में नहीं फंसता है, इसलिए मैं पाप में नहीं फंसना चाहता हूं, जितनी मेरी आवश्यकता उतना ही मैं आपसे मांग रहा हूं। नान्यत्ते काम ए राजन वदान्या जगदीश्वराम नैना प्राप्नोति वे विद्वान यावद अर्थ है प्रतिग्रह। बलि महाराज ने कहा, अब बलि को तो बहुत ही दुख हुआ कि इतना मैं प्रसन्न हुआ हूं इनको देख करके और मुझे तीन पग भूमि मांग रहे हैं, मुझे कितना शर्मिंदा कर दिया इन्होंने।
लगभग
बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान और वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि तुम्हारी बालकों जैसी है। उपदेश तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुद्धि बालकों जैसी है तुम्हारी है? तुम अभी बालक हो और तुम्हारी बुद्धि छोटी है, अतः तुम्हें अपने हित का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपना स्वार्थ पता नहीं है, तुम्हारा हित किसमें होगा तुम्हें पता नहीं है। हाँ, किससे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो तुम सोचते नहीं। अहो ब्राह्मण दायादे वाचस्ते वृद्ध सम्मताम तुम बालो बाल स्मति स्वार्थम प्रत्यय बुधो यथा। मैं तुम्हें पूरा द्वीप दे सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल तीन पग भूमि मांग रहे हो, अतः तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लग रहे हो। केवल तीन पग भूमि। माम मचो अभी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम पदत्रयम प्रणीते यो बुद्धिमान द्विपदासुतम। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे फिर और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव चाहो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो सके। नापमान माम प्रज्ञ भूयो याच तुम अर्हति तस्मा वृत्ति करीम भूमि मटो कामम प्रतीक्षमे। भगवान ने कहा, अब भगवान क्या कहते हैं, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है, उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम जितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नप। यदि मैं तीन पग भूमि से संतुष्ट ना हो, तो अगर तुम एक द्वीप भी अगर दे दोगे तो मुझे और सब द्वीप पाने की इच्छा होगी। फिर तो मेरी इच्छा का अंत ही नहीं है। फिर तुम जितना भी दोगे वो पर्याप्त नहीं होगा, मैं सब कुछ लेना चाहूंगा तुम्हारा। तो भी मतलब फंसा लिया ना, कि अगर तुम ज्यादा देना चाहते हो तो भी मैं तुम्हारा सब कुछ लेना चाहूंगा। तो अच्छा है, तीन पग भूमि दे दो, फिर तीन पग भूमि काफी है। त्रिभी कमे क्रमे रसंतुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते नव वर्ष है समय ते न सत द्वीप है बरे छयाम। तो भगवान कहते हैं कि इच्छा का तो फिर अंत ही नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं तो मेरी इच्छा का फिर अंत ही नहीं है। तो समझ लो फिर ना, कि मैं फिर क्या मांगूंगा तुमसे। इसलिए इच्छा यही है कि मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी सुख नहीं प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आत्म संयम में नहीं है वो तीनों लोगों को पा करके भी संतुष्ट नहीं होता है। यदृच्छयो प्रपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्ट भिर्लोक रजिता आत्मोपस्थादिते। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, तो फिर बलि महाराज ने क्या किया, जल पात्र उठाया, चलो ठीक है फिर जितना आप कह रहे हो उतना ही लो, है कि नहीं। लेकिन फिर तो सीधी बात थी कि अगर ज्यादा लेना है तो फिर कितना लेना है, सब कुछ लेना है, तुम्हारा जो कुछ है सब कुछ दे दो। तो फिर बलि महाराज भी डर गए, फिर चलो ठीक है तीन पग भूमि ही ले लो। अब उनको पता नहीं था तीन पग भूमि भी कितनी होती है, वो भी सब कुछ होता है, तीन पग भूमि सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से जो है जब उन्होंने संकल्प किया तो शुक्राचार्य ने जो है उनको फिर मना किया और उन्होंने कहा कि देखने में ये ब्रह्मचारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये भगवान हरि हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन करके तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देंगे ना, ये कह दिया। और अब तुम्हारे पास जीविका के लिए भी कुछ नहीं रहेगी, जीविका के लिए कैसे रहोगी, तुम कैसे जिंदा रहोगे है? और दो पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग के लिए स्थान नहीं रहेगा, तो वैसे भी तुमको फिर झूठ बोलने का फल मिलेगा। तुम्हारा झूठ तो वैसे भी हो रहा है, इसलिए चाहे कि तुम अभी झूठ बोल दो कि नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी तीन पग में भी पूरा तो हो नहीं पाएगा और तुम्हारा वचन तो झूठा ही होगा। जब इधर भी झूठा है, ऐसे भी झूठे वैसे भी झूठे, तो अच्छा है कि अपना सब कुछ बचा लो और कह दो कि नहीं देना आपको कुछ भी नहीं देना, ये बोल दो तुम। और फिर कहा शुक्राचार्य ने कि देखो, अपनी जीविका के लिए अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें दोष नहीं होता है, उन्होंने कहा अपने जीव का पार्जन के लिए कोई झूठ बोले तो उसमें दोष नहीं होता है। अब बलि महाराज जो है फिर मतलब ये कहा शुक्राचार्य से कि अगर ये जो है ना आप कहते हो कि ये भगवान है, अगर ये भगवान है, है तब तो मेरे लिए और अच्छा मौका है कि ये मांग रहे हैं तो मैं अपना सिर भी काट करके देने के लिए तैयार हूं, इससे अच्छा और मौका क्या होगा। अगर ये भगवान है तो फिर क्या विचार करने की जरूरत है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि भगवान मांग रहे हैं मुझसे है? तो ये दाने के लिए सबसे अच्छा तो यही अवसर है। तो इस तरह से जब बलि महाराज ने जब ये बात कही तो शुक्राचार्य ने साफ दे दिया कि मैं गुरु होकर के तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए समझा रहा हूं, और तुम नहीं अगर मेरी बात मानते हो तो तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तुम ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओ। लेकिन बलि महाराज जो है मतलब विचलित नहीं हुए, और उनकी पत्नी विंध्यावली जो है वो भी कम नहीं थी है? कभी कभी स्त्रियां जो है ना ज्यादा वो होती हैं, गुस्सा होती हैं पति अगर दान दे, लेकिन कोई कोई स्त्रियां जो है ना अपने पति से भी आगे बढ़ करके होती हैं। तो विंध्यावली जो है सोचो सब कुछ जाना है, उनका पता चल गया कि ये भगवान सब कुछ ले लेंगे है ना, लेकिन तभी विंध्यावली भी उत्साह के साथ में क्या करती है वहां पर आई और पानी से भरा सोने का विशाल जलपात्र लेती आई कि भगवान है तो अगर ये सब कुछ लेंगे तो भी हमारा जो है लाभ है, ये सोच करके। और इस प्रकार से जो है भगवान ने फिर अपना शरीर बढ़ाया। जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया तो उनके शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं समा गई। भगवान ने अपने जब शरीर बढ़ाया और रसातल भगवान के पांव के तलवे में था और पृथ्वी जो है भगवान के पांव में थी, सारे पर्वत पिंडलियों में हैं और घुटनों में विविध पक्षी हैं, जंघों पर वायु देवता हैं और कटी कमर में जो है बलि महाराज ने देखा असुरों को भगवान की कमर में स्थित हैं, कमर में सातों समुद्र हैं, वक्षस्थल में सारे तारे हैं। इस प्रकार से भगवान का शरीर बढ़ता गया और आगे चल करके क्या हुआ कि भगवान अपना दूसरा पग जब भरते हैं, जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो पूरा स्वर्ग लोक उसके पग में आ गया। पहले पग में तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और शरीर से आकाश को नाप लिया और भुजाओं से सब दिशाओं को नाप लिया, और दूसरे पग को रखा तो स्वर्ग नाप लिया, और उनका जो पैर है पैर का अंगूठा सर्वलोक से ऊपर सत्यलोक में चला गया, ब्रह्मा के लोक में चला गया। और पैर के अंगूठे से फिर क्या हुआ, पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड के जो ऊपरी छिद्र था उसमें छेद हो गया, जिसके कारण समुद्र की कुछ बूंदें ब्रह्मांड के अंदर आ गई। तो वही भगवान को धोते हुए ब्रह्मलोक में आई, वो बूंदें वही गंगा जी हैं जो कि ब्रह्मलोक से फिर उतरती हैं और स्वर्ग लोक में आती हैं, स्वर्ग से पृथ्वी में आती हैं। तो भगवान के चरणों से जो है ना वो गंगा जी प्रकट हुई। तो भगवान ने दो कदम से तीनों लोक नाप लिए और फिर बलि महाराज से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, और बलि महाराज ने उन्हें कहा कि मेरे सिर पर रखो, और भगवान ने इस प्रकार से बलि महाराज पर पूरा अधिकार कर लिया और फिर आदेश दिया उनको कि वे सतल लोक में जाएं, और वो सतल लोक में भगवान स्वयं बलि महाराज की रक्षा के लिए उनके द्वारपाल बने हैं, और बलि महाराज को उन्होंने इतना अधिकार दिया है कि जो असुर उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे उनका चक्र उस असुर का वध कर देगा। इस प्रकार से वामन देव ने बलि महाराज पर कृपा करी। भगवान वामन देव अग्रभा तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, धन्यवाद।